कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल मोक्ष कराना है या कोठी बनाना, बंगले बनाना, कार खरीद कर रख देना, ये नहीं है। ये तो एडिशनल है, बाई प्रोडक्ट है भक्ति का। जो दास आपको भक्ति देगा परमात्मा की दी हुई, इस साधना से आप जो सुख वैसे सारा जीवन खोजने में लगे रहते हो, प्राप्त करने में, वो नहीं मिलते, तो इस भक्ति का वो बाई प्रोडक्ट है। वो तो आपको वैसे ही मिलेंगे। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य भूस बनाना नहीं होता, उसका उद्देश्य कनक लेना होता ताकि जीवन रक्षा हो, और भूस तो अपने आप बन जाता है। भूस तो अपने आप बनता हो तो बनेगा ही बनेगा। तो दास जो आपको शास्त्र अनुकूल साधना बता रहा है, उससे संसारिक सुख तो अपने आप होंगे ही होंगे, आप मांगो चाहे मत मांगो। ये तो एक ऐसा साधन ऐसा है। तो इसलिए आप जी को सब सदग्रंथों से परिचित करना अनिवार्य है। अब ये जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 और 17 को समझने के लिए ये श्रीमद् भगवत गीता आपका घना सहयोग देगी, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सारांश है और सिंपल लैंग्वेज में है, वेदों से भी सिंपल लैंग्वेज में है ये। तो इससे हम देखेंगे, देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब आपको दिखाते हैं आठवें अध्याय का 13वां श्लोक, ये देखिएगा, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर ये 13 है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, हम पढ़े हैं, शिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। 13वां, इसका अर्थ है कि माम ब्रह्म, जो गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में बोल रहे हैं, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और विवारण अनुसमरण उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम, सांस यानी शरीर छोड़कर जाते समय भस्मांतम शरीरम, वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में भस्मांतम शरीर लिखा है, और इसमें लिखा है ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो इस तरह प्राप्त होगी, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, सुमन करता हुआ, उच्चारण करके सुमन करता हुआ ये प्रयाति तो जंदे हम, जो शरीर छोड़कर जाता स याति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता, ओम से मिलने वाली परम गति। ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, क्योंकि ये ब्रह्म का सिमरण है, मंत्र है। और आठवें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं, वो भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। लेकिन ये कंसेप्ट आज इतना ही क्लियर करना था कि ये ओम मंत्र ये ब्रह्म का है, और गीता ज्ञानदाता आठवें अध्याय के एक मैं अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने जो सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है वो तत्ब्रह्म कौन है कि जिसको जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से यानी बुढ़ापे के दुख और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, तो वो किम तत्ब्रह्म जिसको जानने के बाद प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य वो सुप्रीम पावर है। तो श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में 16 और 17 में स्पष्ट किया हुआ है, पूरे ब्रह्मांड की एक स्थिति बताई है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, सबका धारण पोषण करने वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है, और जमीन से जो बाहर दिखाई देता है वो तना, वो जड़ तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपी हुई है, और बाहर जो दिखाई देता है वो वृक्ष कहलाता है। तो परमात्मा ने खुद आकर अपनी वाणी में बोला है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार, और पेड़ जो जड़ है वो गुप्त है, तो जो जमीन से बाहर दिखाई देता तना उसको अक्षर पुरुष समझो, आगे उसके एक मोटी डार निकलती है उसको सरपुरुष समझो, उसके तीन शाखाएं हैं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी ये शाखाएं समझो, और पात रूप हम सब संसार समझो। तो जड़ को इसको वृक्ष का पालन कहां से होता है, मूल से, जड़ से। तो श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 मंत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा। पहले तो परमात्मा आए थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वही करके जाते हैं, इसलिए वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ज्ञान सुनाते हैं। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। अब वो जड़ कौन बताओगा, जड़ तो उन्होंने गुप्त छोड़ दी, इस दास को भेजा कि वो जड़ कौन है, वो कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो मूल। तो 15वें अध्याय के गीता जी के 1 से 4 का अर्थ है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की यह पहचान होगी कि उस संसारोपी वर्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को, तना डार पत्ते जड़ कौन है, तो जो बताता है सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड की रचना की, और केवल उसकी भक्ति करना, मेरी भी नहीं करना। यदि पूर्ण मोक्ष चाहता है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वहां जाना चाहता है। और फिर 15वें अध्याय के 16 और 17 बताया है कि तीन पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ज्योति निरंजन काल है, अक्षर पुरुष उसका तना समझो जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और उसके तीन शाखा है जो वृक्ष के, वो रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी समझो। और फिर बताया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, उत्तम पुरुष तो कोई और है जिसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवै ईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है, सबका धारण पोषण वही करता है, जैसे मूल से, जड़ से पूरे पेड़ की, वृक्ष की पोषण होता है, परवरिश होती है। तो यहां यह स्पष्ट किया, और कई आपको भ्रमित कर देंगे कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, तो पुण्यात्माओं वहां ये क्या कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं श्रेष्ठ हूं, इनसे मजबूत हूं, इनसे बलवान हूं, ताकतवर हूं, बुद्धिमान हूं, इसलिए लोक वेद में इस दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि उसने तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते। तो कहने का भाव यह है कि एक तो दो परमात्मा से दोगे, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी परम शांति चाहिए और शाश्वत स्थान जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते वो चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और फिर उसके विषय में बताया कि चौथे अध्याय के 32 और 34 मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आके ज्ञान देता है, वो तत्व ज्ञान है। उसके मुख कमल से बोली गई वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो यज्ञों की जानकारी यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता गीता ज्ञानदाता तो एक अध्याय और बना देता। इसलिए उसने कह दिया है कि तत्वदर्शी संतों से पूछो। फिर बताया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4 श्लोक में परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परमेश्वर को पाने की, शाश्वत स्थान को पाने की, उस परम धाम को पाने की विधि बताई है। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, फाइनल फैसला है, नथी कर। तो गीता ज्ञानदाता ने अपना नाम तो ओम स्पष्ट कर ही दिया, तत् और सत ये सांकेतिक हैं, ये तत्वदर्शी संत के लिए छोड़ दिए। तो वो तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है, इसके पास वो कंप्लीट कोर्स है। तत् और सत ये सांकेतिक हैं, तत् ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, ये अन्य मंत्र है, तत् नहीं है, अन्य मंत्र है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, जाप है, वो अन्य मंत्र है। उसको सार शब्द भी कहते हैं, सार नाम भी कहते, आदि नाम भी कहते। तो ये कंप्लीट कोर्स उस परमेश्वर के पाने का, और वो कंप्लीट कोर्स तत्व उस तत्व ज्ञान के अंदर है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है। उसमें कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट कोर्स है। प्रथम मंत्र सतनाम, फिर सार नाम, इससे मोक्ष होगा। वो साधना इन वेदों में नहीं है। वेदों में परमात्मा की महिमा है। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में तत्व ज्ञान में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस ज्ञान से, जिस वेद से, उस तत्व वेद से मैं मिलूं, वो ज्ञान इन वेदों में नहीं, ये वेद जानते नहीं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। उसको बताने के लिए स्वयं परमात्मा आते। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है, हमने पुरुष को सिद्ध करना, पुरुष माने परमात्मा, ये देखिएगा। अब हमने ले लिया श्रीमद् भगवत गीता रख दी, यजुर्वेद उठा लिया, और ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही अनुवादित है, ये यहां से प्रकाशित है, ये वही वाला है जो आप पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये वही वाला है। हम 4400 अध्याय पढ़ रहे हैं, 40वां अध्याय यजुर्वेद का। 15वें श्लोक में हमने पढ़ा है ओम करतो समर कल्व्य समर करतो समर, ये तो पढ़ लिया कि ओम नाम का जाप, काम करते करते श्रमण करो, विशेष कसक के साथ श्रमण करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर श्रमण करो, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम बसमानतम शरीरम, शरीर भस्म होने पर, नष्ट होने पर, छोड़ने के समय जब आपकी जो वायु है, प्राण आपके जो जीव है, उसमें इतना अमृतव हो जाएगा कि वो जो ओम से होता है। अब हम यहां आते हैं 44 में जाएगा 17वें श्लोक में, ये 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है हे मनुष्य जैसे ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, गीता वेद ज्ञान दाता कहता है मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, या किया जाता है आना चाहिए, और वह जो वह प्राण व सूर्य लोक में पुरुष है, ये पुरुष शब्द है संस्कृत में, पुरुष, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। हमने पुरुष सिद्ध करना था यहां से, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। एक तो ये खुद कहता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूं हे मनुष्य, क्योंकि ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूपी था काल मुझसे, जो अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी ज्ञान दिया जा रहा है जो वह है। वेद ज्ञानदाता कह रहा है कि जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष है, वह तो परोक्ष है, यहां है लिखना था अहम, यू कहता अहम, यह है असो, सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। खम माने ब्रह्मलोक, दिव्य आकाश रूप, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म रहता है और ये मेरा ओम नाम है। अहम, अहम माने मैं आकाश के तुल व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म ना लिखा, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम, मैं उसका ओम सबका रक्षक, जो मैं उसका ऐसा नाम जानो, ऐसा कि ओम लिखना था, मेरा ये ओम नाम जानो। ये आधाड़ंगा डाया इसने, तो इसे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा तो ओम नाम है। वो परमात्मा पुरुष माने पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, वो तो वो अन्य है, वो प्रोक्स है। तो यहां अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर अब 8 और 9 को स्पष्ट करेंगे। पहले हमने पुरुष का अर्थ इन्हीं के इन इंजीनियरों से लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये बहका देंगे आपको, पुरुष माने आदमी हो से पुरुष, तो क्योंकि परमात्मा भी मनुष्य जैसा है, इसलिए प्रथम पुरुष वही है, सेकंड हम पुरुष हैं, मनुष्य है। तो वहां प्रथम पुरुष, क्योंकि जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो वो भी पुरुष है, वो परमात्मा है, हम भी पुरुष है, हम नाशवान है, हम डुप्लीकेट है, उसकी शकल है, उसी के आकार मिलते जुलते, मनुष्य जैसे मनुष्य। तो ऐसे ही जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने कहा गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कि हमारे ही उनियार हैं, हमारा सृजनहार, हमारी ही सकल का हमारा भगवान, हमारा बनाने वाला वो परम पिता। तो यहां पुरुष जो है इस भगवान परमात्मा की तरफ संकेत है। इन्होंने भले ही गोलबोल करना चाहा, यहां पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा लिखना बंद कर दिया, हमें मूर्ख बनाने के लिए। ये जनता के नासक थे, इनको संस्कृत अवश्य आती थी, अध्यात्म ज्ञान था नहीं, ये काल के भेजे हुए दूत थे। तो महर्षि दानंद हो, चाहे इसके चेले जितने भी जो इस अनुवाद कर रहे हैं इसका, वेदों का, ये स्वयं भ्रमित हैं और समाज को यथार्थ ज्ञान नहीं दे सके। और चाहे आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं था, केवल परमात्मा ने जिन महापुरुषों को अपना परिचय दिया, अपना साक्षात्कार करवाया, सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन महापुरुषों को छोड़कर और किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था। अब वो ज्ञान इस दास को दिया, उस परम पिता ने, इसका लाभ उठाओ। अब देखो, अब हम आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का, सूक्त 1 और मंत्र नंबर ये 6 तक तो ये परमात्मा लिखते आगे, और 7 में इन्होंने पुरुष लिखना कर दिया, उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था, यहां देखो तब मैंने उस पुरुष को लिख दिया, कोई बात है यार, यहां गड़बड़ कर दी। अब पुरुष माने हम इसको पूर्ण परमात्मा बोलेंगे, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी जब संसार में हाहाकार मच जाती है और अध्यात्म गुरु जो है अज्ञानी हो जाते हैं, उनका उद्देश्य केवल जनता को ठगना ही हो जाता है और हाहाकार मच जाती है, सब प्राणी दुखी हो जाते हैं, तो परमात्मा दुखी होता, क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो फिर वो परमात्मा उन उग्र गतियों से प्रेरित होकर 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, ऐसा ज्ञान बता गए थे, एकदम शांति होगी थी समाज में जो अभी तक चल रही थी, कोई लोटा खसोटी नहीं थी, प्यार से रहते थे, कोई किसी की आत्मा दुखाते से मैं डरता था भगवान से। अब आग लगी है, सब पूरे विश्व में माया माया दिखाई देती है, ना कोई लाज रही, ना कोई शर्म रहा, ना भगवान का डर रहा। तो अब पुनः स्थापना करने के लिए उस शांति की और भक्ति की, परमात्मा ने पहले से ही वचन बोल रखा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना दास भेजूंगा, उसको पूर्ण ज्ञान दूंगा। वैसे तो भगवान ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा बार में पंथ में, गरीब दास वाले पंथ में। परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और पूरी पावर देके उस परमात्मा ने। तो अब पुनः स्थापना होगी शांति की। तो अब यहां क्या बताते हैं कि उस परमात्मा को यहां की उग्र गतियां यानी खतरनाक स्थिति प्रेरणा करती हैं, तब वो परमात्मा एक सुभर शरीर सुंदर शरीर धारण करके यहां प्रगट होता है। जैसे 600 वर्ष पहले आए थे उस समय भी पूरे जो है अध्यात्म मार्ग में लूटे खसोट चल रही थी, ऊत भूत की पूजा होती थी, ये धरे ढके पर ला रखा था सबको। तो परमात्मा ने आके पुनः स्थापना की थी और 64 लाख से सो गए थे उस धानक के, जिसको धानक कहते थे, तुलाहा कहते थे। यदि वो परमात्मा ना होते आज से 600 वर्ष पहले भारत वर्ष के अंदर, 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है। और सबको परमात्मा ने भक्ति से चार्ज किया, उनको सुख दिया, उनके आने वाले बच्चे उनके घर में जन्म लिया, वो अच्छी आत्माएं हुई। तो अभी तक चल रहा था हमारे समाज में शांति बनी हुई थी। अब ये 50 वर्ष से उरे उरे बिजली गिरती जारी है और अब तो पूछो ही मत। हे भगवान, जहां देखे माया माया दिखाई देती है, कोई शराब पी रहा, कोई मांस खा रहा, सरेआम हो गया। और कैसा हाहाकार, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, पूरा मानस दूषित और वातावरण दूषित हो गया। तो अब इस भक्ति से पुनः स्थापना होगी भक्ति की और विश्व में शांति की, परमात्मा का वचन है ये, तो होगा ही होगा। तो अब देखो क्या लिखा है, वेद क्या बता रहे हैं परमात्मा के विषय में, देखिएगा। हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर अब 8 पढ़ेंगे। उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियां यानी भयंकर स्थिति प्रेरणा करती है और भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह पुरुष वह परमात्मा प्राप्त होता है। और किस प्रकार होता है, अब यहां लिखा है कि जिसमें उस शरीर वो परमात्मा तीन प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने के लिए मधुमेह शरीर मिलता है। उस परमात्मा को वो परमात्मा ये समझो तीन प्रकार दूसरों का पालन करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए, कल्याण करने के लिए तीन प्रकार का शरीर धारण करते हैं, तीन प्रकार से। अब जो एक प्रकार का तो आपको बता दिया कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहां उनके शरीर की शोभा मनुष्य दृश्य है, राजा के समान दिखाई देते हैं, सिर पे मुकुट है, छत्र है और तख्त पर बैठे हैं सिंहासन पर। और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसी रोशनी है उस परमात्मा के एक रोमकूप की, बाकी शरीर की कितनी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब आता है, एक नवजात शिशु का रूप धारण करता है, तो दूसरी स्थिति बताई जा रही है, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र अब 9 पढ़ेंगे, ये 9वां है। इसमें लिखा है कि अभी इमम अधन्या उच्छनंती धेनव, धेनु माने गाय, शिशु माने बालक रूप धारी, सो माने परमात्मा, इंद्राय पातवे, इसका अर्थ है इमम माने उस, सोम माने परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा, क्योंकि इन्होंने यहां सोम माने परमात्मा होता है। ये देखिए शुरू में इसी सूक्त के प्रथम मंत्र में सोम शब्द है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में, इस 1 में ये सोम शब्द है, सोम, सोम माने परमात्मा। तो यहां अब हम यहां भी सोम लेंगे। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में सोम शब्द है, सोम, उस परमात्मन को, उस परमात्मन को, उस पर पुरुष को, परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके आता है कुमार अवस्था में, अवस्था में यानी बाल्यावस्था में, अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय लिख दिया इन्होंने, अध्य माने अभी माने पूर्ण रूप से सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे। हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गायें दूध नए दूध नहीं होती, गर्भ धारण नहीं किया जिसने, तो उसने ये उसको ये कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्य। क्योंकि ये कुछ शब्द हमारी लैंग्वेज में संस्कृत के, कुछ पंजाबी के, कुछ वैसे अन्य भाषाओं का भी समावेश है। जैसे अब इंग्लिश वर्ड भी गढ़े हो गए शब्द हमारी भाषा में, ऐसे पहले से हमारे कुछ शब्द मिले हुए हैं भाषा में, तो हम अधन्य माने बिना धनाई। अभी अधन्य पूर्ण रूप से यानी कुंवारी, देनो माने गव्वे, उस परमात्मा की जो शिशु रूप धारण करके जब आता है, उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है, ये वेद बताते हैं। और वो किस परमात्मा की हुई है? श्री कृष्ण की का इतिहास आपके पास जीवनी है, श्री रामचंद्र की जीवनी आपके पास है, जिनको आप भगवान माना करते थे, या ब्रह्मा विष्णु महेश की दिखा दो इतिहास, उन्होंने ऐसे कुंवारी गाय का दूध पिया हो। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? काशी माए थे धानक दुलाहा। अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है, अभी अधन्य, इसको हम पढ़ेंगे कुंवारी, अभी अधन्य कुंवारी, धेनो माने गौवे गायें तृप्त करती हैं, उसका पालन करती है, पालन की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये किस परमात्मा की हुई? कबीर गॉड की। आपको कबीर सागर से प्रमाणित कर दिया था। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए, जिनको परमात्मा मिला, उनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुड़ानी जरा जद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय श्री गीसा दास साहेब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, जो ब्राह्मण थे, 104 वर्ष के हो गए थे परमात्मा उसमें 5 वर्ष के थे, 99 वर्ष की एज के अंदर डिफरेंस था। कबीर साहब 4 वर्ष की लीला में शरीर में थे जब शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे, और 104 वर्ष के उस विद्वान पुरुष के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने ज्ञान के अंदर। तब उसने कहा था कि मैं जब मानूंगा, मैं अंदर समाधि लगाता हूं, मैं समाधि में आपके दर्शन कर लूं। तो परमात्मा ने समाधि लगवाई उसकी, फिर लेके गए ऊपर सुचखंड में, ओहो वहां देखा वास्तविक, एक काल ने धोखा देने के लिए यहां पर स्वर्ग बना रखे और यहां की 4 मुक्तियां बता रखी, चारों मुक्ति का भी समय सीमित है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, और केवल उस अमर लोक में शाश्वत स्थान में गए हुए प्राणी फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। तो उसकी नकल करवा रखी इस काल ने, नकली सतलोक अलखलोक अगम और अकैलोक अनामी लोक तक की रचना ब्रह्मलोक में करवा रखी है इसने, ताकि ये जीव भ्रमित होकर मेरे जाल में फंसे रहे। अब समर्थ आते हैं, उनका ज्ञान समर्थ होता है, उनका काम भी समर्थ होता है, उनकी हर गति समर्थ होती है। तो उस परमात्मा का ज्ञान अनमोल है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, और उनकी जो भक्ति विधि वो भी कंप्लीट है, और साधक भी यदि श्रद्धा से करेगा तो वो भी पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि जिस परमात्मा की महिमा वेद सुनाते हैं वो परमात्मा है, वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। और वो लीला क्या करता है ये भी वेद बताते हैं। एक तो लीला बता दी कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। अब दूसरा ये है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, सतलोक में जिसे अविनाशी लोक कहते हैं, शाश्वत स्थान कहते हैं, वहां रहता है, और वहां से गति करके आता है। और यही वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान मिले, जैसे आदरणीय रामानंद जी ने कहा कि दोहु ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटित रामायण अपनी भाषा में चौपाइयों में लिख दी, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने, गांव छुड़ानी वाले ने परमात्मा प्राप्त होने के उपरांत उनसे प्राप्त उस स्पिरिचुअल नॉलेज में क्या लिखा है, अपनी छाप लगाकर महिमा बता रही है परमात्मा की, जैसे स्वामी रामानंद जी की और कबीर परमेश्वर जी की जो वार्ता हुई उस समय प्रत्यक्ष दृष्टा की तरह बताई है। तो उन्होंने क्या बताया है, गरीबदास जी इसलिए इसमें नाम आता है कि गरीबदास जी ने तुलसीदास जी की तरह, क्योंकि तुलसीदास जी केवल तीन लोग के भगवान के उपासक थे, वहीं तक सीमा थी उनकी बताने की, और ये गरीबदास साहेब जी परम अक्षर ब्रह्म के उपासक थे, उनके भेजे हुए महापुरुष थे, उनसे परिचित थे। तो उन्होंने उस महापुरुष की महिमा बताई है कि रामानंद जी और कबीर परमात्मा की जब गोष्ठी हुई तो रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, शास्त्र स्थान दिखाया और बताया कि जो आपके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में लिखा है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है, और वही परम अक्षर ब्रह्म है, सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जो बताया स्थान, वो ये स्थान है और मैं स्वयं परमात्मा हूं। हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दिनी हमरा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर रहूं ऊपर बसता हूं और अवगत सत कबीर, मैं हूं वो परमात्मा ऊपर रहता हूं। फिर वो दिखाया सचमुच, तब रामानंद जी ने कहा था कि दोहु ठोर है एक तू और भया एक से दो, कह गरीब दास हम कारण है तुम आए हो, मगजो मगजो माने सफर करके वहां से चल कर आए हो। आदि गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, और जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर तान। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, सुन में रहते हैं परमात्मा सथिर, और दास गरीब उधारिया मुझे सतगुरु मिले कबीर, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब इतने परमाणु महापुरुषों के हैं जिन्होंने भगवान को देखा, उन्होंने ये बताया कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, स्वयं भी परमात्मा खुद कहते हैं मैं वहां ऊपर रहता हूं, अवगत सत कबीर दास गरीब अधर बसूं ऊपर रहता हूं मैं, और वहां से तुम्हारे लिए हम ये आते हैं। अब वेद भी क्या बताते हैं, वेद क्या बताते हैं, यदि वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, सरसरी रहता है, वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, तो हम भगवान को पहचान लेंगे। अभी तक तो हमने श्री राम श्री कृष्ण आदि इन महापुरुषों को भगवान इसलिए मान रखा था, इनके पास हथियार थे, सिद्धियां थी, इन्होंने किसी ने कंस मार दिया, किसी ने रावण मार दिया, हम उस भगवान के पुजारी है जो मारता नहीं, वो सबका रक्षक है, कर्म आधार पर छोड़ देता, जो सज्जा से करेगा वो भर लेगा, लेकिन वो मारता नहीं और मरता भी नहीं किसी से, उसको डर नहीं, हथियार रखता नहीं, इसलिए तो उस परमात्मा के पुजारी हैं जो कभी किसी को मारता नहीं, एक दुल्हा बनकर एक गरीब व्यक्ति की तरफ धारण पोषण अपना पालन पोषण भी निर्वाह भी स्वयं करते हैं, वो हमारे लिए एक लीला करते हैं, हमें एक गाइडलाइन देना चाहते हैं, बच्चों ये एक आपका विद्यार्थी जीवन है, ये मनुष्य जीवन, और जैसे जो विद्यार्थी मनुष्य विद्या काल में और बकवाद करता है, सिनेमा देखता है बढ़िया पेंट पुंट गार्ड के है, और सैर सपट्टे को घूमता रहता है, बकवादे करता है, वो फेल हो जाता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए, सब सिलेबस पूरा करते रहना चाहिए, और अपना सिंपल ड्रेस जो हो सिंपल सी अपना रखनी चाहिए, और उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। तो हम सभी अपना उद्देश्य भूलकर जिसको भी मानव शरीर प्राप्त है, दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता आपको बता ही दिया, एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से मानव शरीर लगातार कई जन्म भी हो सकते हैं, और एक केवल 84 लाख योनियों को भोगने के बाद टर्न वाइज मिलता है, यानी नंबर पे वो एक मिलता ही मिलता है। तो उसी पर आज सत्संग उसी पर चल रहा है, अब लास्ट में इसका निष्कर्ष थोड़े ही शब्दों में निकाल देंगे। तो हमारा मूल उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का क्या है, जैसे एक विद्यार्थी का विद्या प्राप्त करके, और जो उस यूनिवर्सिटी में विद्यालय में जो वो मेहनत कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका किया हुआ फल उसको फील्ड में मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टरी कर रहा था, डॉक्टर वहां अगर वो लाभ उसी सुविधा को वहीं खोजता रहा स्टडी काल में, टाइम में, विद्या काल में, तो बच्चा फेल हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने का। तो वो जो वहां जैसे इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, तो इंजीनियरिंग जो करके उस अपने फील्ड में जाएगा, वो सुविधाएं वहां के किए हुए की वहां मिलेगी उसको बाहर जाकर के। तो आप जी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी हो, और जो विद्यार्थी अपने दिग्भ्रष्ट हो गए हैं, उद्देश्य भूल चुके हैं, वो फिर बहुत दुखी होंगे। जैसे एक समय ये दास एक जूनियर इंजीनियर था, वहीं पर हमारे महकमे का कार्य भी चल रहा था और वहीं पर रोड का कार्य भी, बीएनडीआर का कार्य चल रहा था। वहां एक व्यक्ति अपने बच्चों समेत, उसके बच्चे वहां मिट्टी में सो रहे थे, वहां वो टोकरियां मिट्टी डाल रहा था सड़क पर, और उसका सहपाठी था, वो वहां का एक्सियन बना हुआ था बीएनडीआर का, बिल्डिंग एंड रोड्स का, वो वहां आया, वो इंस्पेक्शन करके चला गया। तो उसके जाने के बाद वो व्यक्ति कहता है, मजदूर, वो क्या कहता है कि मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मेरा ये सहपाठी था, मेरा क्लास फेलो था, ये इसका ये नाम है, ये उस गांव का है, हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे उस दूसरे गांव में, और ये पट गया, देखो ठाट कर रहा गाड़ी में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे सोते हैं और मेरे बच्चे मिट्टी में पड़े हैं, मेरे भाग फूट गए, मैं भी पढ़ लेता, शिक्षा ग्रहण कर लेता तो मैं भी ऐसे मौज करता। तो यहां परमात्मा कहते हैं, आछे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुगी खेत। तो आज आप उस अतिथि में हैं जो भक्ति नहीं करते, और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, और इस मनुष्य जीवन पा करके जो साधना सत नहीं करते, वो बाद में ऐसे पछताएंगे जैसे वो मजदूर पछता रहा था। तो आप जी का जो यहां मूल कार्य है, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी का, पूरा सतगुरु प्राप्त करें और पूरा ज्ञान। अब पूरे गुरु का आपको पता नहीं था, आपको एक बालक को सभी पूरे नजर आते हैं, क्योंकि जो भी संत बना हुआ है उसने कुछ तो वाणी बोणी, कोई वेद मंत्र, कोई गीता मंत्र को कहीं ना कहीं से वो तो उसने कंठस्थ कर ही रखे हैं, और वो हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है जो लगातार संस्कृत बोल दे, को बड़ी बड़ी कथा सुना दे, हम न सोचे महापुरुष पढ़ा है तो बहुत गजब का। तो हमें ज्ञान नहीं था, तब हमें ज्ञान होगा, हमारे पास एक ISI मार्क का एक पैमाना होगा, फुट रूल होगा, हम तुरंत नाप लेंगे इसका साइज क्या है, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे अगर हमारे वेदों से नहीं मिलता उसका ज्ञान, तो रिजेक्टेड है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी जो भक्ति नहीं करते और करते हैं शास्त्र विरुद्ध करते हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। जो विद्यार्थी और जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, नावल सुनाता है, को वैसे कोई फिल्मी स्टोरी सुनाता है, तो वो शास्त्र अपने जो पाठ्यक्रम से बाहर का जो ज्ञान है वो एग्जाम में काम नहीं आता, और एग्जाम में जो वही काम आएगा जिसने सिलेबस पढ़ रखा है, पाठ्यक्रम पढ़ा है। तो हमारा पाठ्यक्रम है चारों वेद, 18 पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबल, क्योंकि हम सभी मानव हैं, पूरे विश्व के हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा, हम केवल भगवान के लिए बटते चले गए और भटकते चले गए। अब उसी परमात्मा ने आके हमें फिर इकट्ठा करने की चेष्टा की है, उस समय हम समझ नहीं सके क्योंकि हम अशिक्षित थे, अब हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास हैं, और तत्व ज्ञान दास को परमात्मा ने दे रखा है, ये आपके रूबरू कर दिया है, अब इसको आसानी से समझेंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और उन्होंने बताया कि वो भगवान ऊपर रहता है, ऊपर, और वहां से चलकर आता है और हमें मिला, उसको मिला, ऐसे मिला, सारे प्रमाण है हमारे पास। अब वेद क्या बताते हैं उस परमात्मा के बारे में, वो क्या लीला करता है? यदि वेदों में भी वही प्रमाण मिल जाता है जो उन महापुरुषों को मिला जिन्होंने बताया कि मुझे भगवान मिले परमात्मा और सचखंड लेकर गए, मुझे वापस छोड़ा, वो है परमेश्वर ब्रह्म, वो कंप्लीट गॉड है। और उसी वैसी ही लीला वेद बताते हैं, तो आप अपने आप समझ में आ जाना चाहिए, अग्रम अग्रम खत्म हो जानी चाहिए प्राणी की, और बिल्कुल हो जाएगी। और कहते हैं आंखों देख कर भी जो नहीं मानता, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बिना थी। इसे नालायक आदमी तो कहते सपने में भी नहीं मिला, जो आंखों प्रमाण देख कर फिर बकवास करता है, झूठ बोलता है, रामपाल ये करता है, कहां लिखा लिखा दिखाने लग रहा है। सारे सदग्रंथ प्रमाणित कर रहा हूं, सामने दिखा रहा हूं, फिर भी कहता है, झूठ बोलता है, तो वो स्वार्थी और काल का पक्का दूत है। उस व्यक्ति का मुंह नहीं लगना चाहिए, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए अपने सफल होने के लिए। अब आप जी को इतने स्पष्ट हुआ कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है दूसरी सतिथि में, तीन प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है, हमारा कल्याण करने के लिए तीन प्रकार के शरीर में वो लीला करता है। एक तो सतलोक में रहता है, वहां तो बहुत तेजों में शरीर है, वहां से हल्का तेजपन रूप बना करके, और दूसरे सतिथि में एक शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में परमात्मा मिलते आते हैं, ऐसा लीला करते हैं। उनकी यही लीला परवर्ष की लीला कुंवारी गांव से ही होती है। और तीसरी सतिथि में वो महात्मा साधु संत का रूप बना के कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं। उनके विषय में आपको बहुत बार बताया है कि किन किन महापुरुषों को वो मिले हैं, और उन्होंने फिर बताया कि हमको परमात्मा मिले अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रतीनी भार, और सतगुरु पुरुष, पुरुष माने परमात्मा भगवान कंप्लीट गॉड कबीर हैं, कुल के सृजनहार। अब वेद क्या बताते हैं परमात्मा की महिमा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, कि वेद मेरा भेद है, मेरी महिमा का गुणगान करता वेद, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मैं मिल नहीं सकता, मेरी महिमा तो कंप्लीट है, लेकिन जिस वेद से, वेद माने ज्ञान से, तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, वो ये चारों वेद जानते नहीं, इनमें वो ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान स्वयं ही परमात्मा ना के बताया, हरिविस दास को भेज रखा है, लाभ उठाओ प्राणियों। ये देखो, ये है ऋग्वेद, अब देखो कमाल की बात है, ये स्वयं आर्य समाज के व्यक्ति, ये कहां से प्रकाशित है, सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये कौन, इसके भाष्य आर्य भाषा भाष्य, ये मुद्रक है। कमाल की बात है कि जो व्यक्ति परमात्मा को निराकार बताते हैं, के वेदों में निराकार लिखा, वो अनुवाद कर रहे, कैसी अद्भुत लीला उस परम पिता की, पुण्यात्माओं आप पर रहम कर रखा है, यदि इन वेदों में ये ना लिख रखा होता, अनुवाद नहीं कर रखा होता इन्हीं के द्वारा, तो ये कभी भी आपको ऊपर न्याणे देते कि रामपाल दास सच्ची कह रहा है, लेकिन वो तो अन्य प्रमाण बहुत से देता दास, और भगवान जो लीला करता वो करके दिखाते, प्रमाणित हो जाता, लेकिन और ज्यादा समय लग जाता, ये भ्रमित करने वालों का दाव लगा रहता। अब इनका दाव कति समाप्त हो गया, इन्होंने अपने करकमल से अनुवाद कर रखा, अनुवाद सही है, उनकी सोच गलत है, उनका अनुभव गलत है। महर्षि दानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक का निर्माण किया है, रचना की है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैंने इस पुस्तक का निर्माण वेदोनुसार किया है, वेदों के प्रमाणों को हल्का सरल करके लिखा है, और उसमें स्पष्ट है कि वेदों के विपरीत ज्ञान है सारा। महर्षि दानंद और उसके सारे चेले परमात्मा को निराकार बताते हैं, उसका कोई स्थान नहीं है, वो एक देशीय नहीं है, एक स्थान पर नहीं रहता, और देख वेद क्या बताते हैं, वो एक देशीय है, भवनों के सब लोकों के ऊपर के स्थान पर रहता है, और वहां विराजमान है, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, एक देशीय है। तो ये महर्षि दानंद कंप्लीटली अज्ञानी आदमी था पूर्ण रूप से, और उसी अज्ञान के आधार से उनके द्वारा भ्रमित आर्य समाज है। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, केवल आपको सही दिशा देना उद्देश्य रखता हूं कि आपके समझ में आया नहीं, ना इन ऋषि महर्षि इन ब्राह्मणों का समझ में आया, इस दास पर दया करी, इसका पूरा मानव समाज लाभ उठाओ, सबका कल्याण होगा, हमने किसी से दवेश नहीं। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, करने वाले यजमान माने भक्त, साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि सतलोक में परमात्मा का रूप आपको बताया दास ने कि बहुत तेजो में है, अगर वो एज इट इज आ जावे यहां पर उसी तेजो युक्त शरीर से जिसके एक रोम को अपना करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा में ला दे, इतनी रोशनी तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती, हम देख सूर्य को नहीं देख सकते, और वो तो करोड़ों सूर्य एक रोमकूप में इतना प्रकाश इतनी चंद्रमा मिला दे। तो इसलिए परमात्मा हल्का अपने रूप को सरल करके आते हैं, जैसे एक कक्ष में कमरे में 1000 वाट का ट्यूब है, 500 की है, 100 की है और एक 10 वाट की है, तो सब बंद करके एक 10 वाट की चालू कर दी या 5 वाट की, तो जितना आवश्यक प्रकाश उससे है वो हो गया, बाकी वो है विद्यमान लेकिन वो प्रकाश ऑफ कर लिया। ऐसे वो परमात्मा का जो शरीर है इतना नूरी है, उसको कम करने के लिए वो अपने उस ऐसे स्विच ऑफ करके ओनली सिंपल सा प्रकाश युक्त शरीर यहां रख लेते। तो उसका प्रमाण यहां देखिएगा, ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं, 86 का 26। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, ये देखो इन्होंने यहां गड़बड़ी कर दी इस, ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोले वह बोला हम कबीर, वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहां कबीर यू कबीर लिखा कबीर, इस रह को इन्होंने संधि छेद करके अपसर्ग लगा दिया, अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता ना आज तक होया है, परमात्मा ही सर्वज्ञ होता है, यहां अर्थ नहीं करना चाहिए था, अर्थ करके अनर्थ किया इन्होंने। यदि कहीं किसी काव्यकार की महिमा वर्णित हो और वहां कवि शब्द हो तो वहां अर्थ किया जा सकता, काव्यकार कर दे सर्वज्ञ वहां भी नहीं किया जा सकता, तो यहां कबीर देव लिखना था। जैसे ये यजुर्वेद है, आपको प्रमाण दिखाते हैं, जैसे ये एक पुस्तक है यजुर्वेद, इस पर ऊपर लगा हुआ है, अब इसी में प्रमाण दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका अनुवाद है, ये प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद राजधानी दिल्ली से, और ये महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है, ये यहां से छपा है। इसके हम आपको ले चलते हैं 36वें अध्याय के, ये 63 अध्याय यानी 36वां अध्याय, 36 और यहां आ गया, ये यजुर्वेद है और यहां देखिएगा इसका प्रथम मंत्र है, इसमें लिखा है कि रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, ये यजु शब्द है, इसका दो अक्षर लगा रखिए। अब इसका अनुवाद महर्षि दानंद जी ने यहां कर रखा है, देखिएगा इसमें यजु, ये यजु शब्द है, इसका अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही, अगर इसका अर्थ कर देता तो ये महिमा यजुर्वेद की थी, और यहां यजुर्वेद लिखना पड़ा, यर ला के हमको यजुर्वेद बोलना यजुर्वेद, तो यहां इसने यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल सही लिखा, अगर यहां अर्थ कर देते तो महिमा यजुर्वेद की थी तो कैसे समझते कि किसकी महिमा, ये अनर्थ हो जाता। इसी प्रकार यहां इन अनुवादकर्ताओं ने कबीर का अर्थ लिखना था कबीर देव, यहां कवि का अर्थ जैसे अपसर्ग भी लगे हैं तो इसको लिखना था कबीर देव है उस परमात्मा का, वो कबीर देव, कबीर देव माने साहब परमात्मा, कबीर हम कबीर बोले कबीर देव लिख देती है, देव माने परमेश्वर और कबीर माने कबीर, हम कबीर साहब कहने लगे अपनी लोकल भाषा में, हम वह को वह बोलते हैं, और कबीर 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 देव कबीर साहब कबीर भगवान कबीर अल्लाह अल्लाहु अकबर, वेदों में उसको कबीर देव, अपनी मातृभाषा में वैसे लोकल लैंग्वेज में कबीर साहब, और कुरान शरीफ के अंदर उसको अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह कबीर कहा है। ये है वही जो काशी में धानक रूप में रहा था। ये उन महापुरुषों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सदगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। अब आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86, हमने फिर से ऋग्वेद ले लिया, यजुर्वेद रख दिया, क्योंकि अब हम इसको प्रमाणित कर रहे थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 को हम पढ़ रहे हैं। यहां आगे थे कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यानी साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सीधा सारस बन जाता है, सब रास्तों को सुगम करता हुआ यानी उनके विघ्नों को संकटों को मर्दन करता है, अपने उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था यहां पर, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, जैसे बिजली आती है बड़े स्पीड से, वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को मिलता है। यहां देखो 27 में क्या कहा, वो कहां रहता है वो परमात्मा, जो परमात्मा ध्यू लोक के यानी तेजो में लोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ठीक है, अब यहां दो कंसेप्ट तक कति क्लियर हो गए। वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, ध्यू लोक के यानी तेजो में लोक के भी तीसरे स्थान पर, वहां तीन पार्ट है सतलोक के, ऊपर के जितने लोक हैं उनको तीन विभागों में बांटा हुआ है, तो उनके सबसे ऊपर के लोक में बैठा हो परमात्मा, और वहां से अब आगे दिखाते हैं, बिजली जैसी गति से आता है, जैसे बिजली एक सेकंड में पहुंच जाती है, और अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो वहां ऊपर रहता है। और अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 दिखाते हैं, 1 और 2 आपको स्पष्ट कर देगा, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर इसका यहां 82 यहां से शुरू होता है, इसका मंत्र 1 है ये रहा। इसमें है कि वो अमर परमात्मा सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, महर्षि दानंद कहता भगवान पाप नाश नहीं करता, आयुर्वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला नाश करने वाला, राजेव राजा के समान राजेव। ये देखना हम 269 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, नितिन कहेंगे दूसरा पृष्ठ बदल गया होगा, अब 270 पे दिखाते हैं, ये 270 राजा के तो उधर पढ़ दिया समान, राजा के समान दर्शनीय है, दशम देखने योगा है, राजा के समान है देखने में, पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, वह है वर्णीय पुरुष को अच्छे आत्मा अच्छे भगत को अच्छे व्यक्ति को जो दृढ़ भक्त है जो पक्के भक्त है उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे पहले वर्षा के दिनों में हमारे घरों में एक कांसी धातु होती थी, कांसी उसके थाली बेले गिलास कटोरे हुआ करते थे, और हमारी दादी जी कहा करती थी हमारी माताओं से चाची ताइयों से कि बाहर जो थाली रखी होती बेले रखे होते कांसी के, कहा करती इनको अंदर रखो, क्योंकि कांसी की धातु पर थाली पर बिजली गिर जाती आकाश की, क्योंकि उसका अट्रैक्शन होता है। तो यहां यही कह रहा है, कहा है वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने उन पुण्य आत्माओं को ऐसे आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसका अट्रैक्शन होता है उन अच्छी आत्माओं दृढ़ भक्तों में, जिस प्रकार आकाशीय बिजली धातु विशेष पर अट्रैक्ट होकर उसी पर आधार बनाकर आती है। बता के कसर छोड़ दी, क्या कमी छोड़ दी वेद ने बताने में। आगे देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया, अब दो में क्या बताया है, किस लिए आता है वो, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप यानी ज्ञान देने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। हो गया स्पष्ट? यही स्पष्ट करना था कि जैसे आकाशीय बिजली आती है गतिशील होकर के यहां आते हैं। और देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 982 का मंत्र नंबर 3 में क्या कहा है, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए, सर्वव्यापक नहीं आप है, गति करते हुए, ये गलत लिखा है, ये ना अपनी सोच थोड़ी अड़ाई है, आप माने आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं, आप स्वयं गतिशील होकर वहां से चलकर आते हो, ऊपर दूर लोग के तीसरे पृष्ठ में रहते हैं, वहां से गतिशील होकर के आप हमारे यहां पर आते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो। अब और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 54 का मंत्र नंबर 3 दिखाते हैं, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त तमन का और मंत्र नंबर 3, इसमें लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भूनो ऊपरी तिष्ठति, भूनो ऊपरी तिष्ठति संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग ऊपर के भाग में भी नहीं वहां वर्तमान है, वहां रहता है, भीतर से आता है नहीं, वहां रहता है अपने आत्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में क्या बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, जो 20 मंत्र 1 में वह परमात्मा, यहां लिखना कबीर देव, ये कवि नहीं, ये कबीर देव, ये ऊपर लिखा कबीर देव, इस रे को इन्होंने या कबीर लिखना था, कबीर देव वो कबीर परमेश्वर में धावी, यानी कबीर परमेश्वर है वह परमात्मा, कबीर देव है कबीर परमात्मा, वह कबीर देव है जो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, यानी वही आकर के ऐसा ज्ञान देता जिससे बुद्धिमान लोग तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और सहनशील है संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में यानी ज्ञान के युद्ध में तिरस्कृत करता है, सबको पराजित कर देता है अपने तत्व ज्ञान से। अब आज इतना ही इन सदग्रंथों से हमने लेना था, अब दास सुनाएगा। एक आज का जो सत्संग सुनाना चाह रहा था दास, अब शुरू कर रहा हूं उसको, लेकिन समय थोड़ा है इसलिए संक्षिप्त में बताऊंगा। अब दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, और दूसरा ये था कि सत्संग केवल परमात्मा ही आकर बताते हैं, यथार्थ ज्ञान स्वयं भगवान बताते हैं, तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने स्वयं कहा है, चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, ईरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। चारों युग में मेरे संतों ने आवाज लगा लगा कर हेला देकर आवाज ऊंचे स्वर में गूंज गूंज कर बोला है, और हमने भी चारों युग में मेरे संत पुकारे, मेरे संत जो मुझसे परिचित हुए, और कूक कहा हम हेल रे, हमने सब जगह आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पर कहा कि तुम साधना गलत कर रहे हो,